नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा के दूसरे चरण के कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी, तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार हाल में आंधी और वर्षा से प्रभावित किसानों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल में चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में बेमौसम बारिश और आंधी से 30 लोगों की मौत। देशभर में महावीर जयंती धार्मिक आस्था से मनाई जा रही है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपरकिंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के कल के मतदान की सभी तैयारियां हो गई हैं। इस चरण में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 95 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इस चरण में तमिलनाडु में 38, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, उत्तर प्रदेश में 8, असम, बिहार और उड़ीसा में 5-5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3-3, जम्मू कश्मीर में 2 तथा पुदुचेरी और मणिपुर में 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले दूसरे चरण में लोकसभा की 97 सीटों के लिए मतदान होना था, लेकिन तमिलनाडु में वेल्लोर में धन बल के आरोप में चुनाव रद्द कर दिया गया। कानून व्यवस्था को लेकर त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट का चुनाव अब तीसरे चरण में कराया जाएगा। तमिलनाडु में लोकसभा की 38 सीटों के साथ ही विधानसभा की 18 सीटों के उपचुनाव के लिए भी कल ही मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। कलेंगनार उत्सव को देखते हुए मदुरई में शाम 8 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
67,720 मतदान केंद्रों पर आज शाम तक 1.5 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और वीवीपैट मशीनें तथा चुनाव सामग्री चुनाव अधिकारियों को सौंप दी जाएंगी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। सुचारू मतदान के लिए सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए स्वयंसेवक मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे। युवा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रिंट, दृश्य और श्रव्य माध्यमों के अलावा सोशल मीडिया की भी मदद ली है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
महाराष्ट्र में कल के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। पोलिंग पार्टियों को निर्देश दिया गया है कि कल के चुनाव के लिए वे आज दोपहर तक अपने अपने स्थानों पर ईवीएम मशीनों और संबंधित सामग्री के साथ पहुंचे। कुल 1,86,06,926 मतदाता 179 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। रमेश जायवाए, आकाशवाणी समाचार, औरंगाबाद।
हमारे गुवाहाटी संवाददाता ने असम में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
कल दूसरे चरण के मतदान सही रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। कुछ मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की गई है। मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे। दूसरे चरण में कुल 50 उम्मीदवार मैदान में हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
बिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 86 लाख से अधिक मतदाता 68 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे।
बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में संवेदनशील घोषित किए गए 3200 से अधिक मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कल 160 मतदान केंद्रों से सीधे वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णिया हवाई अड्डे पर एक हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है, जबकि पटना में एक एयर एम्बुलेंस उड़ान भरने के लिए पूरी तरह चौकस रहेगा। सीमांचल बिहार के अंतर्गत पड़ने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जा रही है। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया से लगने वाली पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के जिलों की सीमा को भी सील कर दिया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल SSB की सीमा चौकियों और सीमावर्ती पुलिस थानों को अलर्ट पर रखा गया है। मतदान कराने के लिए 37,000 से अधिक कर्मचारी अपने पोलिंग बूथों की ओर रवाना हो गए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पूर्णिया।
जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल उधमपुर और श्रीनगर संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। दोनों क्षेत्रों के लिए 4,226 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मध्य कश्मीर के 3 जिलों गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम के 15 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने श्रीनगर सीट पर उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 115 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान 23 अप्रैल को होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में माढ़ा में एक रैली की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हाल में आंधी और वर्षा से प्रभावित किसानों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को मजबूर नहीं बल्कि मजबूत सरकार की जरूरत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एनडीए के सत्ता में आने पर किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति और आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी आज से गुजरात में 2 दिन के लिए प्रचार अभियान शुरू करेंगे। वे हिम्मतनगर, सुरेंद्रनगर और आनंद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार के सिलसिले में केरल में हैं। उन्होंने आज अपने दूसरे निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में रैली की। श्री गांधी ने कहा कि वे वायनाड के लोगों की आवाज बनेंगे और उनके साथ जीवन भर का संबंध निभाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राज्य में आज अन्य स्थानों पर जनसभाएं करेंगे। तमिलनाडु में आयकर अधिकारियों ने टीटीवी दिनकरण के नेतृत्व वाली एएमएमके पार्टी के कार्यकर्ता के घर से 1,48,00,000 रूपये अघोषित नकदी जब्त की है। एएमएमके पार्टी तेनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र की आंडीपट्टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, जहां कल लोकसभा चुनावों के साथ ही वोट डाले जाने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर अभद्र टिप्पणी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने नई दिल्ली में कहा कि अशोक गहलोत की इस टिप्पणी के लिए कांग्रेस माफी मांगे। पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि इस टिप्पणी के लिए गहलोत को नोटिस जारी करे और सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसी टिप्पणी न करने के लिए दिशा निर्देश जारी करे।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
मैं सुवर्णा राज, इंटरनेशनल पैरा एथलीट और इलेक्शन आइकॉन, आप सबसे कहना चाहती हूँ कि भारत के संविधान ने हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया है। आज तक विकलांग जन घरों से नहीं निकल पाते थे, परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज विकलांग जनों को बहुत सी सुविधाएं दी गई है, तो आइए अपने मत अधिकार का उपयोग करें और वोट करें।
इस बार मतदान केंद्र में होंगे व्हीलचेयर्स, रैंप्स, ब्रेल ईवीएम्स, स्पेशल वॉलंटियर्स और कई खास इंतजाम। मन बनाइए, आगे आइए, वोट कीजिए। अधिक जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश के विभिन्न भागों में बेमौसम बारिश और आंधी से 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र सहित कई इलाकों में 10 लोगों की मृत्यु हुई। राजस्थान में कई स्थानों पर आंधी तूफान से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इन घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई। झालावाड़ और जयपुर में 4-4 लोगों की मौत होने की खबर है। 12 तथा उदयपुर में भी लोगों के मारे जाने की सूचना है। मध्य प्रदेश में भी आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई है।
खबरों के मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव और बिजली गिरने के कारण राज्य में कम से कम 10 लोग मारे गए। इनमें इंदौर में 3 लोग, बदनावर और खरगोन में 2-2 तथा रतलाम, शाजापुर और श्योपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौसम से हुई क्षति के लिए शोक व्यक्त किया है। उधर मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में ऐसे ही मौसम की भविष्यवाणी की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मृत्युंजय महापात्रा ने बताया,
एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित कर रहा है। इसके प्रभाव में पास्ट 24 आवर्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली बारिश हुआ है। राजस्थान में भी बारिश हुआ है, मध्य प्रदेश में बारिश हुआ है। कुछ इलाके में हेल स्टॉर्म भी रिकॉर्ड किया गया है और विंड भी गस्ती और स्क्वाली रहा है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे ईस्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कम होता रहेगा, मगर ईस्टर्न इंडिया जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसका इम्पैक्ट आज रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और देश के विभिन्न भागों में बेमौसम वर्षा और तूफान से मरे लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि प्रशासन स्थिति की समीक्षा कर रहा है और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रभावित राज्यों को आश्वासन दिया है कि उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ट्वीट संदेश में श्री राजनाथ सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति दुख प्रकट किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के कई भागों में आंधी और बारिश के कारण हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। फेसबुक पोस्ट में श्री गांधी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे सरकार के राहत कार्यों में मदद करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nrc.in पर भी उपलब्ध हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान संपन्न हो गया है। चुनाव में करीब 19 करोड़ से ज्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया में हुए इन चुनावों में 2,45,000 उम्मीदवार मैदान में थे। अनुमान है कि जोको विडोडो बहुमत प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उन्हें पूर्व जनरल प्राबोबो सुबियांतो से कड़ी चुनौती मिलने की भी उम्मीद है। जैन धर्म के 24वीं और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज श्रद्धा और आस्था से मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं और शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। कर्नाटक में हासन जिले में बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग विंध्यागिरी पहाड़ी पर गोमतेश्वरा स्थित एक ही पत्थर से तराश कर बनाई गई भगवान महावीर की 57 फुट ऊंची प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं।
24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती को जैन धार्मिक स्थल श्रवण बेलगोला में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। जैन धर्म के मानने वाले आज यहां पूजा अर्चना करवाते हैं और भगवान की प्रशंसा में श्लोक उच्चार करते हैं। एक शिला महावीर की मूर्ति को सुगंध वर्धित तेल और बाद में जल से अभिषेक किया जाता है। इसी दौरान जुलूस भी निकाला जाता है। 12 साल में एक बार यहाँ हजारों की संख्या में जैन अनुयायी भगवान के दर्शन पाने आते हैं और महामस्ताभिषेका यानी महास्नान की विधि विधान में भी भाग लेते हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
बिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य समारोह भगवान महावीर की जन्मस्थली नालंदा जिले के कुंडलपुर में आयोजित किया जा रहा है।
देश विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु कुंडलपुर में भगवान महावीर के जन्मोत्सव समारोह में भाग ले रहे हैं। जैन धर्मावलंबियों ने आज सुबह शोभा यात्रा में भाग लिया। मंत्रोच्चार के बीच भगवान महावीर की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक भी किया गया। इस मौके पर दिगंबर जैन मंदिर को आकर्षक और मनमोहक ढंग से सजाया गया है। पावापुरी में भी भव्य तरीके से जयंती समारोह मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक समारोह और प्रवचन होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों को महावीर जयंती पर बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के कल के मतदान की सभी तैयारियां हो गई हैं। तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार हाल में आंधी और वर्षा से प्रभावित किसानों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल में चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में बेमौसम बारिश और आंधी से 30 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में महावीर जयंती धार्मिक आस्था से मनाई जा रही है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।